अध्याय बेटी की हथेली जब स्पर्श संबल बन जाए। सुबह 8:35 बजे, अखिल का बंगला, पोर्च एरिया। सड़क पर एक काले चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर बाहर निकला और दरवाज़ा खोलकर सिर झुकाया। रैना ने घर के मेन गेट से बाहर कदम रखा। अब वो पूरी तरह तैयार थी, एक हल्के गुलाबी सूट में, बाल खुले नहीं, सधे हुए ढंग से बांधे गए। चेहरा न थका हुआ था न चहकता, बस स्थिर और आत्मनियंत्रण से भरा। गाड़ी के पास पहुंचते हुए उसने एक पल रुककर बंगले की तरफ देखा। ऊपर की खिड़की से पर्दा हिला, मगर वहां कोई चेहरा नहीं दिखा। रैना बिना कोई उम्मीद लिए गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने धीरे धीरे गाड़ी बढ़ा दी। अंदर सीट पर बैठी रैना ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखा। अस्पताल का लोकेशन पहले से ही ड्राइवर के पास भेजा गया था। अखिल, उसने बहुत धीमे से बुदबुदाया। न शिकायत थी न प्रेम, बस एक नाम जो उसकी सुबह में अब स्थायी बन चुका था। सुबह 9:10 बजे, सिटी हार्ट इंस्टीट्यूट, रूम नंबर 204। गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकी। रैना ने गेट खुलने का इंतजार नहीं किया, वो खुद उतर गई। तेज कदमों से अंदर दाखिल हुई। सफ़ेद दीवारें, एंटीसेप्टिक की गंध और रिसेप्शन की परिचित सी खामोशी। यहाँ की हर चीज़ उसे बहुत कुछ याद दिलाती थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी शांत था। रूम नंबर 204 का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। उसने धीरे से धकेला। भीतर एक साधारण सा कमरा, किनारे मॉनिटर, स्टूल और बीच में बेड, और उस पर उसके पापा। उनके बाल हल्के से बिखरे हुए थे, आंखों में हल्का थकान, लेकिन चेहरे पर एक कोमल मुस्कान। उनकी नज़र जैसे ही दरवाजे की ओर पड़ी, चेहरे पर चमक आ गई। रैना, रैना अंदर आई एकदम हल्के कदमों से, जैसे किसी मंदिर में प्रवेश कर रही हो। पापा, उसकी आवाज़ अब एकदम नर्म थी। वो उनके पास बैठी, उनकी हथेली अपने दोनों हाथों में ली। कैसे हैं आप? अब ठीक हूँ, उन्होंने कहा। तेरी शक्ल देख ली ना, अब तो बुखार भी डर गया होगा। रैना मुस्कुरा दी, पहली बार उस दिन। उसने धीरे से उनके बाल संवारे। डॉक्टर ने कहा है एक महीना और लग सकता है, लेकिन आपको आराम रखना होगा, उसने कहा। तेरे हाथ का खिचड़ी खाना चाहिए, तब ठीक हो जाऊँगा, पापा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। खिचड़ी नहीं, फल खाइए पहले, देखिए क्या लाई हूँ। उसने पास की टोकरी से एक छोटा सा बॉक्स निकाला, उसमें कटे हुए सेब, पपीता और अंगूर थे। एक चम्मच निकाला और बेहद प्यार से पापा की ओर बढ़ाया। प्लीज़ मुंह खोलिए, उसने बच्चों जैसी सख्ती से कहा। पापा ने थोड़ी शरारत से मुंह खोला। बस इतना प्यार मत कर, आदत लग जाएगी। रैना के चेहरे पर कुछ पल के लिए गहराई उतर आई। तो लगने दीजिए, उसने बहुत धीमे से कहा। फिर जल्दी से मुस्कुरा कर कहा, आपको हर दिन यही मिलना चाहिए, यही देखना चाहिए, यही महसूस करना चाहिए। और किसी दिन हम वापस उसी घर में होंगे जहां माँ की पुरानी किताबें और वो नीम का पेड़ अब भी इंतज़ार कर रहे हैं। पापा की आंखों में नमी तैर गई, मगर उन्होंने वो छुपा ली। तो थक गई होगी, उन्होंने उसकी हथेली को सहलाते हुए कहा। थकान बस वहां लगती है जहां अपना पन्ना हो, यहां मैं सुकून में हूं, उसने कहा। कमरे में कुछ देर खामोशी रही, एक शांत हल्की धड़कनों वाली खामोशी जो उन दोनों के बीच बिना कुछ कहे सब कुछ कह रही थी। सुबह 9:40 बजे, रैना अब उठ चुकी थी। उसने पापा को एक बार फिर से चादर ओढ़ाई और उनकी ओर झुककर माथे पर हल्का सा चुंबन रखा। अब मैं जा रही हूँ जॉब के लिए। बेटा, गाड़ी कहाँ है? पापा ने पूछा। भेजी गई थी, वही वापस लेकर जाएगी। अखिल ने भेजी थी? रैना ने सिर झुका लिया, थोड़ा रुक कर बोली। हाँ, पापा ने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ को फिर से एक बार थामा। जो भी हो बेटा, खुश रहना, आप ठीक रहिए, मैं हर दिन आऊँगी, उसने कहा। वो अब दरवाजे की ओर बढ़ी, आखिरी बार मुड़कर देखा। पापा आंखें मूंद चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे उनकी बेटी उनके माथे की शिकनों को पल भर के लिए मिटा गई हो। सुबह 9:55 बजे, अस्पताल से बाहर। गाड़ी अब भी वहीं थी, ड्राइवर दरवाज़ा खोल चुका था। रैना बैठ गई, एक हाथ में बैग और आंखें अब सामने। अस्पताल से थोड़ा दूर निकलते ही उसने फ़ोन में अपना शिफ्ट देखा। माल पहुँचना ज़रूरी था, लेकिन उसके मन में एक शांति थी। रात की चीखती देहभाषा के बाद सुबह के इस नर्म रिश्ते ने उसे फिर से इंसान जैसा महसूस कराया था। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। रैना अब अपने बैग से लिपस्टिक निकाल रही थी, अगले रोल के लिए तैयार।